नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार आपके अपने खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन के साथ हाजिर हूं मैं धर्मेंद्र। नमस्कार। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं गिरीश बुबना, वरिष्ठ खेल पत्रकार। बुबना, स्वागत आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और सब इस साल मेरा पहला यहाँ आगमन है, तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको और सभी श्रोताओं को।
आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे ढेर सारी बातचीत करें उससे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक निगाह। अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 19 वर्ग के फाइनल में पहुंची। लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। आईएसएल की शुरुआत 14 फरवरी से होगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज इसकी घोषणा की। और आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजों की सूची में 13वें पायदान पर पहुंची। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा दूसरे स्थान पर। तो शुरुआत आज ऐतिहासिक कामयाबी से, क्योंकि अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। बर्मिंगम में महिलाओं के अंडर 19 वर्ग के सेमीफाइनल में आज उन्होंने मिस्र की मलिका अल कराक्सी को लगातार गेम में पराजित किया और पहली बार उन्होंने इस वर्ग के फाइनल में जगह बनाई है। सुनते हैं पहले ये रिपोर्ट।
भारतीय महिला स्क्वैश की नई और बड़ी उम्मीद अनाहत सिंह ने बर्मिंगम यूनिवर्सिटी मैदान पर विरोधी खिलाड़ी की अंतिम चार के मैच में एक नहीं चलने दी। 17 साल की अनाहत ने मैच की शुरुआत से ही विरोधी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने पहला गेम थोड़े संघर्ष के बाद 11-8 से जीत लिया। दूसरे गेम में अनाहत को 11-7 की आसान जीत मिली। तीसरे गेम में मलिका ने वापसी की पुरजोर कोशिश की, लेकिन 12 बार की पीएसए टूर खिताब विजेता अनाहत ने कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार ये गेम भी 11-9 से जीत लिया और पहली बार इस आयु वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ी को सिर्फ 28 मिनट में ये जीत मिली। फाइनल में अनाहत का सामना यूरोपीय जूनियर चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस की लॉरेन बाल्टायान से होगा। अनाहत ब्रिटिश जूनियर ओपन में सभी आयु वर्गों में कुल मिलाकर 9वीं बार फाइनल में पहुंची हैं और उनका लक्ष्य 2005 में ज्योत्सना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता में अंडर 19 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनने का है। वो जिस फॉर्म में है उससे खिताब उनकी पहुंच से अब सिर्फ एक कदम दूर दिखाई दे रहा है। उधर लड़कों के अंडर 17 वर्ग में भारत की समाप्त हो गई है। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी आर्यवीर दीवान को सेमीफाइनल्स में मिस्र के फिलोपेटर सालेह से 9-11, 5-11, 7-11 से हार मिली। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
लड़कों के वर्ग में भारत की चुनौती भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन अनाहत ने जिस तरह का प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में किया है, वैसे तो ब्रिटिश ओपन स्क्वाश जो है वो उनको रास आता रहा है। विभिन्न आयु वर्गों में वो 9 बार फाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन पहली बार अंडर 19 के फाइनल में पहुंची हैं। उनके प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे गिरीश?
बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, और ये 100वीं वर्षगांठ है इस प्रतियोगिता की, और इसको जीतना अपने आप में ये कीर्तिमान स्थापित करेगा अनाहत के लिए। और मैं अपने श्रोताओं को धर्मेंद्र बताना चाहूंगा, अनाहत ये नाम उनका कैसे पड़ा, और जब वो 2008 में जब उनकी पैदाइश हुई तो उनके पिता जो गुरशरण सिंह है वो जपजी साहिब पाठ कर रहे थे अस्पताल में, और वहां से अनाहत नाम उनको मिला। और जो माता पिता जो है वो खुद एथलीट हैं, हॉकी खिलाड़ी रहे, और अनाहत उनको प्रेरित किया पीवी सिंधु ने
जी।
और वो बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी, लेकिन कुछ बैडमिंटन टूर्नामेंट भी खेले, लेकिन वहां पर जो एक करवट बदली, एक जो उनके बदलाव आया, उनकी बड़ी बहन है जो काफी अमायरा, वो स्क्वैश खेलती थी। पहले वो टेनिस खेलती थी, बाद में उन्होंने स्क्वैश खेलना स्टार्ट किया
जी।
तो अमायरा के साथ वो कुछ मैचेस देखने गई, वहां पर उन्होंने कुछ जूनियर प्रतियोगिताएं शुरू की, और उनका फिर वो रुझान जो है इस खेल में
की तरफ हुआ। लेकिन जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल का जो एक दौर रहा है, जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, उस सिलसिले को कायम रखने की और उस प्रदर्शन को दोहराने की और उससे आगे बढ़कर प्रदर्शन की उन पर जिम्मेदारी होगी।
बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अब हम इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये प्रतियोगिता है, इससे पहले किसी भारतीय ने जीती थी वो 2005 में ज्योत्सना चिनप्पा ने जीती। आप ये मान के चले कि लगभग 21 साल के बाद उनके पास ये मौका है। और वैसे जो साल 2025 रहा है उनका स्वर्णिम साल रहा है जब से उन्होंने शुरुआत की, हालांकि जैसे एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, अब इतनी परिपक्व हो गई हैं जहां पर वो एक नेचुरल एथलीट निकल के आती हैं, फ्लूइड स्ट्रोक है और जो अटैकिंग मोड है वो उनका शानदार है। और आज भी जो जीत हासिल की है उसमें सबसे बड़ा योगदान वो क्या था कि जो जो दो कॉर्नर होते हैं आगे की जो दो कोने होते हैं जहां वहां पर उन्होंने शॉट्स खेला जिससे प्रतिद्वंदी जो इजिप्ट की मलाइका अल करकसी है उनको मौका नहीं मिला वापस रिटर्न करने का। हालांकि आप देखें तो सीधे मुकाबले में 11-8, 11-7, 11-9 से सिर्फ 28 मिनट में हराया
जी।
तो इससे लगता है कि अब जब फाइनल में मुकाबला उनका जो होने वाला है वो यूरोपियन जूनियर चैंपियन है और दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस की लॉरेन बल्टायन से होगा। तो मैं ये
मुकाबला अच्छा रहने की उम्मीद है और उम्मीद है कि इस बार वो खिताब भारत के लिए झोली में जरूर लाकर देंगी। अब बात करेंगे बैडमिंटन की। लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी क्वालालंपुर में मलेशिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए। लक्ष्य ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-16, 15-21, 21-14 से हराया। आयुष ने ओलंपिक पदक विजेता मलेशिया के ली जी जियो को 21-12, 21-17 से शिकस्त दी। कल अगले दौर में लक्ष्य का सामना हांगकांग के ली यू यी से होगा। आयुष चीन के शी युकी का सामना करेंगे। ये जो प्रदर्शन है लक्ष्य सेन तो खैर अच्छा प्रदर्शन करते रहे, पिछला साल उनका उतना अच्छा नहीं रहा, मिला जुला रहा, लेकिन आयुष ने जिस तरह से साल के इस पहले टूर्नामेंट में ओलंपिक पदक विजेता को मात दी है ये भारतीय बैडमिंटन के लिए साल की शुरुआत में ही उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया।
बहुत ही BWF का जो कैलेंडर होता है उसमें इस साल का ये पहला टूर्नामेंट मलेशियन ओपन जो है सुपर 1000 जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और वहां पर उन्होंने लोकल जो फेवरेट है मलेशिया के उनको ली जिया को हराया। और धर्मेंद्र सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि ली जिया जो है वो हार गए लेकिन एक चीज और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हालांकि वो काफी समय से चोट से ग्रसित थे और ये और ब्रोंज मेडलिस्ट रहे लेकिन ली जिया इसलिए भी वो मुझे लगता है रिहैब से बाहर निकल के आए और इस प्रतियोगिता को खेला कि जो आने वाले ओलंपिक्स है जो LA में होने हैं, लॉस एंजलिस में होने हैं, और उसका अब से लेकर वो एक साल जो रैंकिंग जो उथल पुथल होती है उसके आधार पे वहां पर शिरकत मिलती है। तो इस लिहाज से भी उन्होंने वहां पर झोंका लेकिन सबसे बड़ी बात उपलब्धियों को नहीं नकारा जा सकता और आयुष शेट्टी ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है और आने वाले समय में हो सकता है कि लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी क्वार्टर फाइनल में आपस में इसी प्रतियोगिता में भिड़ते हुए देखिए आपको।
बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग ISL की शुरुआत 14 फरवरी से होगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज इसकी घोषणा की। इस लीग में सभी 14 क्लब हिस्सा लेंगे। सुनते हैं उनकी ये बातचीत और उनकी ये बाइट।
आज सरकार, फुटबॉल फेडरेशन और सभी फुटबॉल क्लब के प्रतिनिधि के साथ विस्तार से मीटिंग हुई है और हम सब लोगों ने साथ में मिलकर निर्णय करा है कि ISL लीग 14 फरवरी सैटरडे से स्टार्ट होगी और सभी हमारे क्लब उसमें पार्टिसिपेशन करेगी और देश में फुटबॉल प्रेमी और हमारे प्लेयर लिए खुशी का समाचार है। देश में फुटबॉल आगे बढ़े, फुटबॉल में देश अच्छा परफॉर्मेंस करे, लीग के द्वारा हमें देश को अच्छा प्लेयर मिले, इस उद्देश्य के साथ इस लीग कराई जाएगी।
और बेंगलुरु में 7 और 8 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले डेविस कप क्वालिफायर मुकाबले के लिए नीदरलैंड्स ने अपने शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ियों टेलन ग्रिस्पोर और बोटिक वैन डे जेंड चुल्प को 4 सदस्य टीम में शामिल नहीं किया है। ग्रिस्पोर वर्तमान में नीदरलैंड के नंबर 1 खिलाड़ी और उनकी विश्व रैंकिंग 25 है। जेंड चुल्प की विश्व रैंकिंग 75 है। भारत के खिलाफ मुकाबले में सिंगल्स वर्ग में विश्व रैंकिंग में 71वें स्थान पर काबिज जेस्पर डिजोंग और 158वीं रैंकिंग के खिलाड़ी गाइडेन ओडिन नीदरलैंड की अगुवाई करेंगे। डबल्स मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 27वें स्थान पर काबिज डेविस पेल और 35वें नंबर के सेंडर एरेंट्स पर नीदरलैंड का दारोमदार होगा। और एक और खबर टेनिस से जुड़ी हुई। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के आयोजकों ने आज मेलबर्न में पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसे बढ़ाकर अब रिकॉर्ड 111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया गया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल की 96 मिलियन से अधिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तुलना में इसे इस साल 111 मिलियन से ज्यादा कर दिया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 16% अधिक है। पुरुष और महिला सिंगल्स के विजेताओं को 2.79 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। ये पिछले साल से 19% ज्यादा है। उपविजेताओं को 2.15 मिलियन और सेमीफाइनल खेलने वालों को 1.25 मिलियन डॉलर मिलेंगे। क्वालिफाइंग राउंड में 16% की बढ़ोतरी हुई है। सभी सिंगल्स और डबल्स खिलाड़ियों को कम से कम 10% की बढ़ोतरी मिलेगी। मेन ड्रॉ के पहले राउंड से बाहर होने वाले प्लेयर्स को 150,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की शुरुआत 12 जनवरी को मेलबर्न पार्क में होगी। ऑफिशियल ड्रॉ 15 जनवरी को ग्रैंड स्लैम ओवल फैन स्टेज पर होगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो साल के पहले ग्रैंड स्लैम के लिए स्टेज तैयार है। 12 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले गिरीश, ये अच्छी खबर टेनिस खिलाड़ियों के लिए जो इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। पुरस्कार राशि ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा दी गई है।
बिल्कुल, अब जो पारिश्रमिक है वो खिलाड़ियों की साल दर साल बढ़े ताकि वो अपने आप को इस टूर्नामेंट के लिए प्रेरित और भी करते रहे। हालांकि अब दुनिया भर में लीग्स भी का विचलन हो चुका है, तो इस लिहाज से भी धर्मेंद्र जो आयोजक है, जो चारों ग्रैंड स्लैम है, वो चाहते हैं कि अभी भी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इसकी तरफ आकर्षित रहें, क्योंकि अब दुनिया भर में कैसा दौर चल पड़ा है जहां पर लीग्स अट्रैक्ट करते हैं खिलाड़ियों को। तो इस तरह से देखा जाए कि खिलाड़ी वहां पर अभी भी अपनी प्रतिद्वंदिता जो है बरकरार बना रखे।
अब बात क्रिकेट की। सिडनी में एशियस टेस्ट श्रृंखला के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 7 विकेट पर 518 रन बना चुका था। कप्तान स्टीव स्मिथ 129 और ब्यू वेबस्टर 42 रन बनाकर क्रीज पर हैं। उससे पहली पारी के आधार पर 134 रन की बढ़त मिल चुकी है। स्मिथ के करियर का ये 37वां जबकि एशियस के इतिहास में उनका ये 13वां शतक है। इंग्लैंड के लिए अब तक ब्रेंडन कार्स ने 3 जबकि ब्रेन स्टोक्स ने 2 विकेट लिए हैं। 5 मैच की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे है। उधर दुबई में आज जारी आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट रैंकिंग में भारत की कप्तान हरमनप्रीत और बल्लेबाजों की सूची की बात करें तो उन्होंने 2 स्थान की छलांग लगाई है और 13वें पायदान पर पहुंच गई है। स्मृति मंधाना 3रे और शेफाली वर्मा 6ठे स्थान पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी ने शीर्ष स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है। गेंदबाजी रैंकिंग में दीप्ति शर्मा 2रे स्थान पर खिसक गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने दीप्ति को पीछे छोड़कर शीर्ष पर जगह बना ली है। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के एलिट ग्रुप बी के मैच में आज बड़ौदा ने जम्मू कश्मीर को 76 रन से हरा दिया। बड़ौदा ने 332 रन बनाए थे। जम्मू कश्मीर की टीम 256 रन बनाकर ही आउट हो गई। एक अन्य मैच में हैदराबाद ने बंगाल पर 107 रन की जीत दर्ज की। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 352 रन बनाए। जवाब में बंगाल की टीम 245 रन पर आउट हो गई। चंडीगढ़ ने असम पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। असम ने 7 विकेट पर 284 रन बनाए थे। चंडीगढ़ ने 3 विकेट पर 286 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। जयपुर में ग्रुप सी के मैच में पंजाब ने गोवा पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। गोवा ने 211 रन बनाए थे। पंजाब ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अगर हम बात करें मुंबई के मुकाबले की तो मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 7 रन से हराया। मुंबई ने 9 विकेट पर 299 रन बनाए थे। जवाब में हिमाचल प्रदेश की टीम 292 रन बनाकर आउट हो गई। अल्लूर में ग्रुप डी में दिल्ली ने रेलवे को 6 विकेट से मात दी। रेलवे ने 179 रन बनाए थे। दिल्ली ने 4 विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की। अहमदाबाद में ग्रुप ए में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 2 विकेट से हराया। मध्य प्रदेश ने 277 रन बनाए थे। झारखंड ने 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया। रांची में प्लेट ग्रुप के मैच में बिहार ने मणिपुर को 6 विकेट से हराया। मणिपुर ने 169 रन बनाए। बिहार ने 4 विकेट पर 170 रन बनाकर जीत हासिल की। समय ज्यादा नहीं है लेकिन जो विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं काफी दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं और कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन निखर कर सामने आ रहे हैं जो वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा संकेत है भारत के लिए।
बिल्कुल, इसमें काफी बड़े खिलाड़ी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इन सब ने हालांकि डिसअपॉइंट किया लेकिन श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज उभर के निकले, तो एक आने वाले समय में अच्छा रहेगा इनके लिए मौका।
जी, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। ग्रीस स्टूडियो में आने के लिए बातचीत के लिए शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद
दोस्तों, मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।